जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता की जय गौरताल की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय इज इट थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल हरी हरि बोल श्री श्री एकस्व आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ जय श्री कृष्ण न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर ना ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरि हरि बोल एवरीवन हरि हरि बोल जय श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स हम सब अपने आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ हो चुका है जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। तो आज के श्लोकों में जाने से पहले हम श्री कृष्ण भगवान का आह्वान करते हैं उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी बुद्धि में परमात्मा विराजमान हो अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनके इंस्ट्रक्शंस को और उनके गीत को अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन में भी अपना सके, है ना। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि हम सब लोग भगवद गीता का अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरण ली कर रहे हैं। भगवद गीता सारे शास्त्रों का सार है और अध्याय 2 पूरी भगवद गीता का सार है ना। तो इसमें हमने एक वर्स किया था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 57 वर्स किया था हमने, आपको पीडीएफ भी भेजा हुआ मैंने, है ना। तो जब आप सुनते हो तो श्लोक को ना ओपन कर लिया करो, पीडीएफ एक भेजा है मैंने उसमें, फिर मुझे श्लोक भेजने की जरूरत नहीं रहती, उसमें सारे श्लोक है सारे अध्याय है 1-18 और उसमें सारे श्लोक है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। तो 57 वर्स किया था हमने, है ना। सबसे पहले जो 41 श्लोक हमने समझा था तो उसमें हमने समझा था कि संसार में दो कैटेगरी के लोग हैं, है ना। एक कैटेगरी अस्थिर बुद्धि वालों की है और एक कैटेगरी स्थिर बुद्धि वालों की है, है ना। तो भगवान ने 41 श्लोक से 44 श्लोक तक भगवान ने अस्थिर बुद्धि वालों की बात की और 55 वर्ष से भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, उनका कैसा व्यवहार होता है, उनका कैसा लाइफस्टाइल होता है, उनका सोचने का तरीका कैसा होता है, उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। तो 57 में भी भगवान ने स्थिर बुद्धि वालों की बात की है तो भगवान ने कहा कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा कर्म योगी किसी भी व्यक्ति वस्तु आदि में कोई मोह नहीं रखता। मतलब बाहर से तो वस्तु व्यक्ति आदि से उसका रिलेशन रहता है, संबंध रहता है बाहर से, लेकिन अंदर से लिप्त नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति शुभ अशुभ लाभ हानि सक्सेस फेलियर इस कॉन्सेप्ट से ऊपर उड़ जाता है। मतलब कोई भी अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो वो इतना प्रसन्न नहीं हो जाता, इतना खुश नहीं हो जाता, मतलब इतना अभिमान में नहीं आ जाता, और जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें वो दुखी नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं चला जाता। मतलब जो भी उसके सामने परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो परिस्थितियां फेवरेबल हो चाहे वो अनफेवरेबल, उसमें वो लिप्त नहीं होता। वो समझ चुका है जो भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, चाहे वो मेरे फेवर में आई है चाहे अनफेवर में आई है, वो सारी परिस्थितियां टेम्परेरी हैं, स्थाई नहीं है, इसलिए वो उनमें ज्यादा फंसता नहीं है, उनमें लिप्त नहीं होता है, क्योंकि अब उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, परमात्मा के साथ स्थिर हो चुकी है उसकी बुद्धि। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो अंदर जी। हरि बोल।
हरि हरि बोल एवरीवन। अध्याय 2 श्लोक नंबर 58। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार खींच लेता है जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है, वह दिव्य बुद्धि में स्थिर है। आई रिपीट, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार खींच लेता है जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है, वह दिव्य बुद्धि में स्थिर है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। फ्रेंड देखो, कई बार हम सोचते हैं ना कि हम फोकस क्यों नहीं रख पाते, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे महात्मा लोग कैसे फोकस रख पाते हैं, है ना? वो क्यों विचलित नहीं होते, उसका आंसर इस श्लोक में दिया है। इस श्लोक में भी भगवान हमें स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण नहीं बता रहे हैं, जो कि 55 श्लोक से भगवान अब स्थिर बुद्धि वालों के क्या लक्षण होते हैं, उनका कैसा बिहेवियर होता है, उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो योगी या भक्त अपनी योजना के अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फ्रेंड्स अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और अपनी इंद्रियों के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं, उनकी ही बात सुनते हैं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, जो परमात्मा के साथ स्ट्रांगली जुड़े स्थिर बुद्धि लोग होते हैं, वो इसलिए विचलित नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपनी योजना के अनुसार वो अपनी इंद्रियों को चलाने में वो सक्षम हो जाते हैं। देखो इसमें भगवान ने एक कछुए का एग्जाम्पल लिया हमें समझाने के लिए। देखो कछुआ जब चलता है ना, उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। लेकिन जब उसको कुछ खतरा लगता है तो वो अपने सारे अंगों को छिपा लेता है, एक कवच में, एक खोल में छिपा देता है, उसमें सिर्फ उसकी पीठ ही दिखाई देती है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई पत्थर है ये। तो ऐसे ही जो भगवान कह रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो अपनी 5 इंद्रियों को और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है ना। हमारी 5 इंद्रियां होती है, उन्होंने 1 मन होता है, इंद्रियों का मालिक मन है ना। तो ऐसे ही जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है, वो अपनी 5 इंद्रियों और 1 मन, इन 6 को विषय भोगों से हटा लेता है। मतलब मन से भी वो विषयों का चिंतन नहीं करता है ना। मतलब फ्रेंड्स हमारी जो इंद्रियां है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है ना कि जो हमारा 1 मन है उसको भी कंट्रोल में करके रखती है, है ना। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों को संयम करने की आवश्यकता को कछुए की तरह इंद्रियों को अपने शरीर में रखने के माध्यम से बताया। मतलब कछुओं का इसलिए भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि हमें भी जैसे कछुओं को कोई खतरा होता है तो वो अपने आप को अपने ही 1 कवच में छिपा लेता है ना। और जब उसको लगता है कि अब खतरा कोई नहीं है, फिर से वो अपने अंगों को बाहर निकाल कर चलना शुरू कर देता है ना। यानी कि कछुआ जो है ना वो अपने हिसाब से चलता है, अपनी इंद्रियों के हिसाब से चलता है ना। तो इंद्रियों को कछुआ वश में करता है, इंद्रियां उसको वश में नहीं करती है ना। वैसे फ्रेंड्स जो डिवोशन में सही में पहुंचे हुए जो लोग हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने प्लान के हिसाब से चलाते हैं। जहां उनको लगता है कि मुझे चुप रहना चाहिए है ना, वहां वो चुप रहते हैं। जहां उनको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, वहां वे बात कर सकते हैं, और कितनी बात कहाँ करनी है बस वहां पे वो उतनी ही बात करते हैं, है ना। क्योंकि हर एक चीज में, हर एक बात में उनकी जो इंद्रियां हैं उनके कंट्रोल में आ गई होती है, है ना। तो ये तो है स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण, मतलब हायर लेवल ऑफ डिवोशन, मतलब हायर लेवल की स्टेज है ये। अब इससे हमें क्या सीखना चाहिए कि हम तो अभी है नहीं है इस स्टेज पे। हमारा तो ये अवस्था है कि अगर हमारी इंद्री ने कहा कि चलो अब ये खाना खा लेते हैं, हमने खाना खाया हो तब भी हम कुछ हमें स्वीट अच्छी लगेगी तो हम वो खा लेंगे, चाहे हमें शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी जो इंद्री है, इंद्री होती है ना हमारी टंग, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है हमारे। हम तो जो हमारी इंद्रियां बोलती है, हमारा मन बोलता है, उसके अकॉर्डिंगली लाइफ जीते हैं। हमें पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, है ना। लेकिन हमारी जो मन है वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो अभी सोना चाहिए, मुझे नहीं उठना है 5 बजे 6 बजे, मुझे नहीं उठना है, मुझे तो सोना चाहिए, है ना। तो हमारी अवस्था यहाँ पे होती है। हमें पता है कि सत्संग हमें सुनना चाहिए, अच्छी बातें हमें सुननी चाहिए और अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन हमारा मन कहता है कि नहीं नहीं क्यों टाइम वेस्ट करना है, मुझे टीवी देख लेना चाहिए। तो जीव रूपी इंद्रिय है वो कहती है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, कान रूपी इंद्रिय है वो कहती है कि मुझे कुछ सुन लेना चाहिए, है ना। फालतू चीजें हम स्क्रॉल करते रहते हैं फोन में तो हमें लगता है कि हमें वो सुन लेना चाहिए, है ना। तो हम तो अपने इंद्रियों के दास होते हैं फ्रेंड्स, अपने मन के दास हैं। और ये श्लोक भगवान कह रहे हैं जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन की स्टेज में है, जिन्होंने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर रखा हुआ है, जो अपने हिसाब से लाइफ जीते हैं कि मुझे ये करना है तो मुझे करना ही करना, मुझे ये खाना चाहिए, है ना। उनको पता होता है कि मुझे हेल्दी डाइट खानी चाहिए, है ना, मुझे नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, तो वो कर पाते हैं। तो हमें क्या सीखना है इस हाई स्टेज पर, हमें तो पता है हम है नहीं अभी, है ना। लेकिन इस हायर स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इस कछुए का एग्जाम्पल याद रखना फ्रेंड्स। देखो कई बार जो डिवोटीज होते हैं ना, जो नए नए भक्ति में आते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो कई बार उनका क्वेश्चन होता है कि यार हम कैसे करें, है ना, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ऐसा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जो सचमुच डिवोशन करना चाहता है, भगवान के रास्ते में चलना चाहता है, तो वो रास्ते भी निकाल मिलेगा ना अपने। मान लो आप ऐसे ग्रुप में कहीं फंस गए, मान लो आप कहीं मैरिज में गए या कोई भी ऐसा फंक्शन है, मतलब आप वहां पे ऐसे ग्रुप में आप फंस गए कि जहां पे नेगेटिव बातें हो रही है, मान लो भक्ति को लेकर समझ लो कि भक्ति को लेकर ही कुछ नेगेटिव बातें हो रही हैं, आपको ही कुछ ऐसे टोंट बज रहे हैं, मान लो कि आजकल तो बड़ी भक्ति हो रही है ना, बहुत चैंटिंग करती हो तुम, है ना, या मंदिर भी जा रही हो, कुछ भी बात हो सकती है ना, भोग भी लगाती हो तुम, तो मतलब सब मिलकर आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उसमें इंगेज होने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं और आप वहां पे अकेले पड़ जाओगे, और आप अभी नई नई भक्ति में आगे आए हो, है ना, आपको नई नई ये चीजें आपने सीखी है, तो आप उनके साथ, आपको जरूरत नहीं है इंगेज होने की, है ना। आप कुछ पॉजिटिव बात कर सकते हो, अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो आप उनको डिस्ट्रैक्ट करवा सकते हो, है ना, उनके बारे में कुछ अच्छी बात कर दो, टॉपिक बदल दो, और जहाँ पे ज्यादा कोई हद करे तो वहां पे अपनी बात भी रखनी पड़ती है ना, क्योंकि देखो जो नए नए होते हैं उनको तो पता नहीं है इस रास्ते में चल के आगे क्या डिफरेंस आएगा क्या नहीं, है ना, ये बात उनकी हो रही है जो नए नए इस रास्ते में चले हैं, लेकिन जिनको चलते हुए 3-4 साल हो गए हैं, है ना, उनकी थर्ड रीडिंग है या सेकेंड रीडिंग है, तो आपके जीवन में तो परिवर्तन आ चुके हैं ना, आप तो समझ चुके हो ना भक्ति की डेफिनेशन को, या भगवान के साथ जो संबंध आपने बनाया है आप उसको एक्सपीरियंस कर चुके हो, है ना, तो आप उनको समझा भी सकते हो, है ना, आप उनको बोल सकते हो कि आपको भी भगवद गीता पढ़नी चाहिए, मेरी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो उनको कि मैं पहले डिप्रेशन में थी, कि मैं दवाइयां खाती थी पहले, या कुछ भी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं भगवान की बातें सुनने में, उनकी सत्संग सुनने में, या भगवद गीता का अध्ययन करने से मुझे बहुत ही मजा आता है, चैंटिंग करने से मेरे में बहुत बदलाव आया है, भोग लगाने से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, तो आप अपनी बात रख सकते हो वहां पे, आप उनको भी थोड़ा सा अगर वो सुनना चाहते हैं तो आप उनको थोड़ा सा गाइड कर दो, आपको लगता है कि वो बात सुन सकते हैं, तो जहां पे आप बात करनी चाहिए आपको बात भी करनी चाहिए, है ना, अगर आपको 3-4 साल हो गए हैं तो आप बात कर सकते हो ना, है ना, तो मतलब पहले तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने इस रास्ते में चलना है ना, और मैं चल रही हूँ और मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, है ना, पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि नहीं मेरे को इस रास्ते में चलना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी का अध्यात्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना, मुझे प्योरिटी की तरफ बढ़ना, और जो नए डिवोटीज हैं उनको नेगेटिव लोगों को जितना हो सकता है उनको अवॉइड करना है, जहां पर आप गाइड कर सकते हो थोड़ा सा पॉजिटिव चीजों के बारे में वहां आप गाइड कर दो, और कुछ लोग देखो भगवान की बात नहीं भी सुनना चाहते कि कहीं कहीं भी आप शुरू हो जाते हो जब, है ना, जब नए नए डिवोशन में जो लोग आते हैं वो हर वक्त ही यही चीजें बातें करते रहते हैं कि मैं भोग लगाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं माला करती हूँ, मैं 4 माला करती हूँ, मैं 8 माला करती हूँ, कंपेयर करना शुरू हो जाएंगे दूसरे लोगों के साथ, है ना, हर वक्त। लेकिन भगवान ने यही कहा ना कि देखो स्थिर बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, उनको पता होते हैं कहाँ पे क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है, और वो उतनी ही बात करते हैं, है ना। और जो भक्ति में नए नए जुड़ते हैं उनके साथ ये एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनको लगता है कि बस जो मैं कर रही हूँ वही बेस्ट है ना। हो सकता है आप जिससे बात कर रहे हो वो भक्ति में बहुत आगे हो, है ना, तो अपना लेवल समझ के ही बात करनी है, ये नहीं है कि अब हम गोलोक एक्सप्रेस का जुड़े हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम बहुत कुछ आगे निकल गए, है ना। हो सकता है हम दूसरा व्यक्ति है उससे बहुत ही पीछे हो, है ना, तो अपने आप में बस ये भावना लेकर बात करनी है कि भाई अगर कोई सुनना चाहे तो मैं उसको कुछ समझा दूं, है ना। लेकिन नेगेटिविटी वाले लोगों को अवॉइड करना है, हमें पता चल जाता है कि ये नेगेटिव लोग हैं, ये हमारी बात नहीं सुनने वाले हैं, उन लोगों को अवॉइड करना है। और जहां पे आप गाइड कर सकते हो थोड़ा सा तो पॉजिटिव आप उनसे बात कर सकते हो, लेकिन हर जगह शुरू नहीं हो जाना है, मतलब अपने माहौल देख के बात करनी है। और कुछ लोग भगवान की बात नहीं करते तो आप कुछ पॉजिटिव बातें कर सकते हो, है ना, कि ना क्यों ना हम भगवान की ब्लेसिंग्स को काउंट करें, कितनी सारी बातें होती है हमारे पास, है ना, क्यों ना हम अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के बारे में बात करें, किसी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आप उसको समझा सकते हो, किसी सोशल सर्विस वाले काम में अपने आप को एंगेज कर सकते हो, मतलब जहाँ पे भगवान से जुड़े काम हो रहे हैं वहां भक्त क्या करता है, अपनी इंद्रियों को प्रभु की सेवा के लिए यूज कर लेगा ना। मतलब अगर आप मंदिर गए मान लो तो आप दर्शन कर रहे हो, प्रार्थना करते हो, है ना, भजन गाते हो, कोई सत्संग ही अटेंड कर रहे हो, घर में भोग लगा रहे हो, आरती कर रहे हो, मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हो, भगवद गीता पढ़ रहे हो, है ना, तो क्या हो गया, इंद्रिया हमारी प्रभु की सेवा में लगी हुई है ना। इसलिए तो बोला जाता है कि डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन में हमें जाना चाहिए, लेकिन हर वक्त तो हम ये काम कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि हम सामाजिक जीवन में रह रहे हैं, गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, तो हर बार तो ये वातावरण हमें मिलेगा नहीं, तो उस समय भक्त अपनी इंद्रियों को वैसे ही अपने शेल में ले लेगा जैसे कछुआ ले लेता है। तो मतलब हमें समझाया गया है कि अगर हम डिवोशन के रास्ते में चल रहे हैं, अध्यात्म के रास्ते में चल रहे हैं, तो हर वक्त तो हमें यह वातावरण मिलेगा नहीं, है ना, कि जिसमें हम हर वक्त ही भगवान की बात कर रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो, हर वक्त ये वातावरण नहीं मिलेगा। कई बार हमें बाहर भी जाना पड़ता है, और कई बार घर में ही हम ये सब चीजें हर वक्त ही नहीं कर सकते। तो उस समय क्या करना है, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले लेना, जैसे कछुआ ले लेता है अपने सब अंगों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। मतलब जैसे कछुए को खतरा आता है तो वो अपने शेल में चला जाता है ना, अपने अंगों को कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन हमारे लिए क्या खतरा है, हमारे लिए इस फ्रेंड्स को संगति, है ना, चाहे वो फिजिकल हो या फिर सोशल मीडिया पर हो, है ना, जो सोशल मीडिया में हम लगे रहते हैं, घंटों घंटों फोन में लगे रहते हैं, पता है नहीं हमें देखना क्या है, फालतू चीजें स्क्रॉल करते रहेंगे। आजकल ये तो जो रील्स बनी हुई है ना, उस पर कितना टाइम वेस्ट होता है। मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा कई बार कि बस 5 मिनट देख लेती हूँ, 5 मिनट ऐसे करते करते को आधा घंटा जाता है, पता ही नहीं चलता है, है ना। तो फिर मैं क्या सोचती हूँ कि नहीं, अब मुझे 2-3 घंटे बिल्कुल फोन को हाथ ही नहीं लगाना, बिल्कुल फोन को टच नहीं करना है ना। तो ये संगति खाली हमारी फिजिकली नहीं होती, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया पे भी हमें पता नहीं चलता हमें करना क्या है, क्या देखना है, क्या सुनना है। और हमारे लिए शेल में जाना क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपने फोन पकड़ा है और आपका मन है कि आपको टाइम पास वाली एक्टिविटी में लेके जा सकता है, है ना, कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स को देखी जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे लगे हो, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, है ना, फेसबुक देख रहे हो, है ना, या फिर आप सोच रहे हो चलो मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही कर लेती हूँ, है ना। और शैल में जाना क्या हुआ कि नहीं नहीं क्यों ना मैं सत्संग ही थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ, कल मेरा सत्संग है वेडनेसडे को, तो चलो आज मैं पुराने वाला सत्संग देख लेती हूँ कि उसमें क्या करवाया था, वो वाला चैप्टर ही मैं रिवाइज कर लेती हूँ, वो वाला वर्स ही मैं रिवाइज कर लेती हूँ, है ना, या अगले सत्संग में क्या होने वाला है थोड़ा उसके बारे में ही वर्सेस पढ़ लेती हूँ, है ना। तो आप शैल में चले गए, आपने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कर दिया, है ना। तो यहाँ तो आपके हाथ में था ना अपनी इंद्रियों को बिजी करना, लेकिन बहुत सारी जगहों में कई बार आपको कोई मैरिज अटेंड करनी है, किसी फंक्शन में जाना है, या आपके घर में कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे अपने होते हैं जो, लेकिन जो इस रास्ते में नहीं चले हैं आध्यात्मिक रास्ते में, तो भी आप सीख जाते हो फ्रेंड्स इन सब चीजों को धीरे धीरे, जब आप चलते रहते हो ना तो धीरे धीरे आप सब सीख जाते हो, आपको भी कंट्रोल करना आ जाएगा कि यार मुझे ये बात इनके सामने करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है ना, आज मेरा भगवान ने ये सेवा दी है कि मैं इन गेस्ट को अटेंड करना है, तो मेरे को उनको गेस्ट को अटेंड कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं कर पाई चैंटिंग तो कोई बात मैं कल कर लूंगी, कल मैं डबल कर लूंगी जो मैं माला करती हूँ, 4 माला 8 माला या 16 माला जो भी मैं, कोई बात नहीं, इसको 2 दिन में, अगले 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लूंगी, है ना। तो इस तरह से हमें फिर बातें समझना आ जाती है अपने आप ही, है ना, डे बाय डे जैसे हम प्रैक्टिस से बातें होंगी फ्रेंड्स, है ना, बोलने से नहीं होंगी, आपको धीरे धीरे जब आप चलते रहोगे ना, और आपको चलते चलते जब एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना, आपकी लाइफ बदलती है, तो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे भी इसी रास्ते पे चलना है ना। और फिर आपको मतलब लोगों को डील करना भी आ जाता है ना, आपको लगता है कि नहीं यार मेरा जीवन बदला है, सोसाइटी ने थोड़ी मेरा जीवन देना है। जब मेरे को नेगेटिव सिचुएशन आई मेरी लाइफ में, तब सोसाइटी ने आपको सिखाया कुछ कि भगवद गीता आई आपके जीवन में, तो भगवद गीता ने सिखाया आपको, है ना, भगवान ने बदला आपका जीवन, है ना। तो बस ये 2 बातें हमें भूलनी नहीं है कि भगवद गीता और भगवान ने मेरा जीवन बदला है, तो मुझे इनको छोड़ना नहीं है। आज जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी मेरा 3 साल पहले का अपना जीवन याद करो, है ना, जैसे मैं आपको अपना ही बताती हूँ, जैसे कि 2020 में हम सब साथ में चले, है ना, शुरू के 4-5 महीने के बाद फ्रेंड्स, 4-5 महीने तो मुझे भी कुछ ज्यादा इतना समझ नहीं आता था भगवद गीता में, ठीक है, जो लिखा था वह पढ़ा देती थी एज इट इज, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं मतलब उसके बाद जो नहीं 4-5 महीने का प्रोसेस था, मतलब वो मुझे भूलता नहीं है, अलग ही एक्सपीरियंस था वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर में नहीं रह रही हूँ, रहती तो घर में ही थी, लेकिन मुझे लगता था कि बस मेरा जीवन चल रहा था भगवद गीता और जो भी मेरे को प्रैक्टिसेस मैं कर रही थी, भोग लगाना, आरती करना, चैंटिंग करना, जो और चैंटिंग भी आपको ही बोलो कि बहुत ज्यादा नहीं करती थी, थोड़ी थोड़ी चैंटिंग 4-5 माला करती होंगी, है ना। तो धीरे धीरे मतलब ये सब चीजों से, भगवद गीता से और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, मतलब मेरा सोचने का ढंग ही धीरे धीरे फ्रेंड्स बदलता गया। मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे जीना आ गया, मैं जो फंसी हुई थी ना इस दुनियादारी में, मैं इस दुनियादारी से निकल के मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रही थी उसमें डिफरेंस समझ आ गया। ऐसा मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं कर क्या रही हूँ, बस जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं मुझे वैसे ही करना, ऐसा लगता अच्छा ऐसे जीवन जिया जाता है, लेकिन उस जीवन जीने से तो मैं खुश थी नहीं कभी, है ना। लेकिन ये जो चेंजेस आई ना मेरी 2020 में 2021 में, अपने आप ही सर भगवद्गीता से और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से फ्रेंड्स, ये दो चीजें, इसलिए मैं बोलती हूँ कि दो चीजों को अपने जीवन से कभी मत भूलना, जिन जिन चीजों से हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है ना। आज जो हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस पोजीशन में है, बाहर से कुछ नहीं बदला, ये बात बाहर की नहीं हो रही है फ्रेंड्स, इंटरनल हो रही है। इंटरनल जो लाइफ बदली है, सोचने का ढंग बदला है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो धीरे धीरे जब चलते रहोगे बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी द्वंद्वों के, है ना, मतलब निष्ठा से अगर आप चलोगे, श्रद्धा रखोगे परमात्मा के ऊपर, है ना, तो अपने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपका घर गंदा है तो उसको बाहर से तो कोई आएगा नहीं घर साफ करने के लिए, हम सबको मिलजुल कर करना है ना। तो ये मिलजुल कर जो करने का बेस्ट तरीका है ना, यही है कछुआ बनना, है ना। जो हमारा अंदर इतना गंदा हुआ पड़ा है, बाहर तो हम सफाई कर ली, हो गया, है ना, लेकिन अंदर जो हमारी अंदर इतनी गंदगी होती है, इतना द्वेष भाव होता है, इतना घमंड होता है, है ना, इतना गुस्सा होता है, कंपैरिजन में फंसे हुए हैं हम, जो भी लोभ लालच होते हैं हमारे अंदर, जो भी विकार होते हैं फ्रेंड्स, वो कैसे खत्म होंगे, अंदर की सफाई कैसे होगी? अंदर की सफाई होगी परमात्मा से जुड़ने से, भगवद गीता पढ़ने से, ज्ञान मिलने से, है ना। अंतरात्मा अंदर मतलब शुद्ध हो जाती है फ्रेंड, मन बिल्कुल निर्मल निश्चल हो जाता है, फिर अंदर कुछ नहीं, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं आता, है ना। जब अंदर से कुछ गलत नहीं आएगा तो आप बाहर से कुछ किसी के लिए गलत नहीं करोगे, है ना। तो आपको यही होगा फिर कि मैं किस तरह किसकी हेल्प कर सकती हूँ, तो मुझे करनी चाहिए। तो कछुए के उदाहरण को हमें हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स। कछुआ देखो रहता तो इसी संसार में, लेकिन अपने अंगों को कैसे वश में रखकर चलता है। देखो फ्रेंड, जैसा रिमोट कंट्रोल होता है ना, रिमोट कंट्रोल को हमारे हिसाब से चलना चाहिए, तो हमारी जो इंद्रियां हैं और हमारा मन है, इसको भी तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए ना। हम चाहते हैं ना रिमोट कंट्रोल हमारे हिसाब से चले, तो जो हमारा मन और हमारी इंद्रियां हैं, जिसको कि हमने समझ लिया हुआ कि मैं ही इंद्री हूँ, मैं ही मन हूँ, है ना, वो मैं मन और मैं इंद्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये हम समझ चुके हैं, तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए फ्रेंड्स हमारा मन और इंद्रियों पे। हमें उनके हिसाब से नहीं चलना, हमें मन और इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाना है ना। अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमें अपने पास रखना है ना, अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को देना है, और अपने मन और बुद्धि का कंट्रोल भी हमारे पास ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम इसका यूज कैसे करें, है ना। इंद्री भी कुछ होती है, मन भी कुछ होता है, ये हमें पता था, है ना, भगवद गीता पढ़ने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहे हैं, और हम समझ भी पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हैं कि नहीं, हाँ रियली मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्री नहीं हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, है ना। तो इस चक्कर में हम कई बार कंट्रोल कर भी लेते हैं और कई बार हम नहीं भी कर पाते हैं, है ना। लेकिन चलो थ्योरी में हमें ये बातें पता लग रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो हमें कोशिश करनी है अपने इंद्रियों को काबू में करने की, तो अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो 100% है भगवान भी हमारी मदद करेंगे, अगर हम इस रास्ते में चलना चाहेंगे। भगवान क्यों बता रहे हैं हमें कि स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण क्या होते हैं, है ना, 55 वर्ष से भगवान हमें बता रहे हैं, है ना, ताकि भगवान की ये गाइडेंस है कि हम भी उनके रास्ते में चले, कि हम भी उस रास्ते में चल सकते हैं, है ना। कि जैसे एक डिवोशन में जो बहुत ही डीपली जो डिवोशन से जुड़ा हुआ है ना, अध्यात्म के रास्ते में चल रहा है, स्थिर बुद्धि वालों के लक्षण भगवान हमें बता रहे हैं, है ना। तो भगवान कहीं ना कहीं हमें भी यही गाइड कर रहे हैं ना कि आप भी इस रास्ते में चल सकते हो, है ना। अगर हम सोच लेंगे और अगर हम कोशिश कर लेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे ना, 100% मदद करेंगे, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो अमिता जी। हरी बोल।
हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 59। इंद्रिय विषयों का त्याग करने के बाद भी देही का विषयों के प्रति लगाव बना रहता है, परंतु परम रस का आस्वादन करने पर उसकी इंद्रिय भोग की लालसा नष्ट हो जाती है। आई रिपीट, इंद्रिय विषयों का त्याग करने के बाद भी देही का विषयों के प्रति लगाव बना रहता है, परंतु परम रस का आस्वादन करने पर उसकी इंद्रिय भोग की लालसा नष्ट हो जाती है। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें भी हमें भगवान स्थिर बुद्धि में कैसे एक महात्मा रहता है, एक सिद्ध पुरुष कैसे रहता है स्थिर बुद्धि में, उसी के लक्षण बता रहे हैं भगवान। तो इस श्लोक में भगवान हमें परम रस का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हायर टेस्ट की बात बता रहे हैं, और इस श्लोक में भगवान एक और चीज हमें बता रहे हैं कि जो बुरी आदतें होती है ना हमें, जो बुरे संस्कार होते हैं, उनको किस प्रकार जीता जा सकता है, और उन बुरी आदतों को ही जीतने का, उन बुरी आदतों से ही बाहर आने का एक ही तरीका है फ्रेंड्स, जो कि इस श्लोक में बताया भगवान ने, हायर टेस्ट का कॉन्सेप्ट जो समझाया हमें। कोई भी बुरी आदत होती है हमें,
हम सबको पता होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए लेकिन हम नहीं कर पाते है ना, या हम सबको पता होता है कि हमें नशे नहीं लेने चाहिए, ड्रिंक्स नहीं करने चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ड्रिंक्स लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। पता है हमें अंदर से हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हम करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हायर टेस्ट होना बहुत जरूरी है। देखो पता तो होता है हमें कि कोई भी गलत आदत है मेरे अंदर, अगर मुझे पता होता है कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ या कोई भी आदत है मेरे अंदर है ना, कोई भी ऐसा संस्कार है मेरे अंदर, आप सबको अपना पता होता है कि मैं कंपैरिजंस करती हूँ या मैं मेरे में ग्रीड बहुत ज्यादा है या मेरे में एंगर बहुत ज्यादा है, कोई भी इशू है मेरे में बहुत ज्यादा है ना, तो मुझे पता है ये मुझे आदत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हम उस चीज से छुटकारा पा पाते हैं है ना, क्यों? क्योंकि हमें ये हाई टेस्ट का कॉन्सेप्ट पता नहीं था। देखो बोलने से कुछ नहीं होता कि मैं अब ये आदत मेरे अंदर छूट जाएगी, अब मैं नहीं करूंगी गुस्सा या मैं नहीं करूंगी गुस्सा ना, कोई भी आदत है अगर हमारे अंदर, अगर हम कुछ टाइम के लिए कर भी पाते हैं ना, लेकिन वो जो पुराना संस्कार होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारे अंदर इतनी जड़े जमा कर बैठा होता है ना कि वो जाता नहीं है हमारे अंदर से, क्योंकि हमें हायर टेस्ट का कॉन्सेप्ट पता नहीं था फ्रेंड्स है ना। और इस श्लोक में भगवान हमें हायर टेस्ट का कॉन्सेप्ट हमें समझा रहे हैं। देखो आर्टिफिशियली अगर आपने कोई दूर भी रख लिया अपने आपको, मान लो आपको पता है कि टीवी देखने से मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है ना, मैं अपनी चैंटिंग नहीं कर पाती हूँ है ना, मेरे घर के काम भी सफर हो रहे हैं और उससे मैं सीखती क्या हूँ, कुछ भी नहीं, फालतू की चीजें मेरे अंदर बढ़ती है, एंगर बढ़ता है, लोभ लालच ग्रीड ये सारी चीजें ही अंदर आती है ना टीवी देखकर भी या न्यूज देखकर। आपको पता है, मुझे भी पता है ये टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या हम उस चीज से बाहर आ पाते हैं है ना। तो आर्टिफिशियली मतलब आप जोर लगाकर दूर कर भी लोगे, चलो आज मैं टीवी नहीं देखती, लेकिन फिर भी आपका मन तो टीवी में ही रहेगा ना कि नहीं नहीं मुझे तो टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना है। तो बाहर से तो चाहे वो टीवी ना देखे फिजिकली, लेकिन उसके अंदर मन में इच्छा बनी रहती है, वो हमेशा ही सोचती रहेगी कि मुझे टीवी देखना है। ऐसे कोई सिगरेट स्मोकर है ना, तो हो सकता है वो धक्का देकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दे सिगरेट पीना, लेकिन उसके अंदर जो इच्छा है ना सिगरेट पीने की वो नहीं जाएगी है ना। तो फ्रेंड्स भगवान बता रहे हैं कि अगर उत्तम रस आ जाए, उत्तम रस मतलब हायर टेस्ट, उत्तम रस किससे आता है, भगवान से जुड़ने से आता है फ्रेंड्स, भक्ति के रास्ते में चलने से हमारे अंदर हायर टेस्ट आता है ना। और बुरी आदतों को जीतने के लिए भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, हमें पता होता है लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा लगता है ना कि ऐसे से धक्का आता है कि नहीं और मैं फिर वो कर लेती हूँ वो गलत काम, ये सबके साथ होता है, ये सारी बातें पता होता है हमें ये नहीं करना चाहिए है ना, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ होता है कि मैं कर लेती हूँ वो काम, चाहे वो किसी से बात करने का तरीका हो है ना, या कोई भी ऐसा संस्कार। फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, वो चाहती है कि उसका बच्चा पढ़ ले और टीवी ना देखे है ना, ये टीवी का एग्जाम्पल वो अपने लिए भी ले सकती है और अपने बच्चे के लिए भी तो रखते हैं ना हम कि नहीं नहीं वो टीवी ना देखे या फोन ज्यादा ना चलाए है ना, तो वो बच्चे को प्रेशराइज भी कर लेती है कि वो टीवी ना देखे या फोन ना चलाए ताकि वो एग्जाम्स में अपना अच्छा कर ले है ना। और बच्चा भी हो सकता है कि प्रेशर में आके आधे अधूरे मन से पढ़ाई करने बैठ जाए, लेकिन मन में क्या चल रहा है, काश मैं टीवी देख लूं, काश मेरे पास फोन होता, लेकिन एक्सटर्नली तो वो टीवी से दूर हो गया, फोन से दूर हो गया, लेकिन इंटरनली वो टीवी से फोन से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो बहुत बार हम चीजें छोड़ने की बहुत कोशिशें करते हैं फ्रेंड्स है ना, कई बार एक्सटर्नली कुछ चीजें छोड़ भी पाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन इंटरनली उन चीजों को भोगने का लालच वो खत्म नहीं होता है ना। तो इसकी टेक्निक बताई भगवान ने कि कैसे आप उसका लालच भी खत्म कर सकते हो, कि जब आपको परम रस मिलता है अध्यात्म का, जब आप अध्यात्म के रास्ते में चलते हो, भक्ति मार्ग पर चलते हो, तो आपको आनंद मिलने लग जाता है ना, तो उस समय शारीरिक भोगों को भोगने की सारी इच्छा ही खत्म हो जाती है। जैसे मैं आपको अपना ही बताऊं, मुझे सोना बहुत पसंद था है ना, तो मैं दिन में कुछ भी हो जाए मैं सोती थी है ना, लेकिन अब जैसे जब से भगवद गीता पढ़ रही हूँ तब से मुझे लगता है कि यार मुझे क्यों टाइम वेस्ट करना, मैं कुछ अच्छा सुन ही लेती हूँ है ना, कुछ अच्छा पढ़ ही लेती हूँ है ना, तो मतलब मैंने सोना तो मेरे देखा कि मेरे जो लाइफ में ना काफी कम हो चुका है। जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया लास्ट वर्स में फ्रेंड्स, कि जब 2020 में आपको पढ़ाने लगी है ना, तो जब भी भगवद गीता से एक्चुअली में तभी जुड़ी इंटरनली है ना, तो मतलब उसके 4-5 महीने के बाद का जो टाइम था ना फ्रेंड्स, मतलब भगवद गीता से और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से मुझे इतना अच्छा लगने लगा ना, और मतलब एक अलग सी विल पावर आ गई मेरे अंदर, और मैंने बहुत आराम से जो भी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी मान लो, है ना, कुछ भी होती है प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती है लाइफ में, तो वो कैसे निकल गई मुझे पता नहीं चला कि मैं उस चीजों से कैसे निकल गई, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि कैसे मैं वो चीजें कैसे होती गई। मतलब उसके बाद जो दुनियादारी की जो फालतू चीजों की डिजायर थी ना वो खत्म ही होती गई धीरे धीरे, यानी बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी परसेंटेज में मैं देखूं तो मुझे पता है अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, सिंपल बात है ना। अगर लाइफ में अच्छे फेजेस चल रहे हैं तो मुझे पता है ये भी परमानेंट नहीं है, स्थाई नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है फ्रेंड्स कि बुरी आदतों को कैसे छोड़ना है, हमें ध्यान इस पर देना है कि हमें भगवान से कैसे जुड़े, है ना। आप बुरी आदतों के बारे में सोचोगे ना, कोई भी आज तक फ्रेंड्स बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाया इस तरह से, क्योंकि हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं, राइट नॉलेज हमें मिलती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो अंदर का जो फालतू के संस्कार है वो निकल जाते हैं, जो नए संस्कार अपने जड़े बनाने लगते हैं ना, तो अपने आप ही फ्रेंड्स हमारी जो बुरी आदतें हैं ना हमें छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप ऑटोमेटिकली छूटने लग जाती है। तो मतलब डिवोशन करने से, अध्यात्म के मार्ग में चलने पे ना परम रस मिलता है, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स लोअर जो रस है ना, जो लोअर टेस्ट है वो खत्म हो जाते हैं। मतलब ये कुछ वैसा है कि जैसे मान लो आपके पास कोई पुराना फोन था और कोई आपसे वो लेने की कोशिश करे तो आप कभी भी नहीं दोगे, तो आप बोलोगे कि मुझे तो यूज करना है, लेकिन आपको कोई नया फोन गिफ्ट कर दे तो आप पुराना फोन इजीली दे दोगे ना, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा पुराने फोन में, क्योंकि जब आपको कुछ बेटर मिलता है ना तो आप लोअर चीज को ऑटोमेटिकली छोड़ देते हो। फ्रेंड्स हम सब ऐसे ही हैं, हमें कुछ बेटर मिलता है ना, देखो अब हमें भक्ति का जो रस मिला है ना, स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता मिल गया हमें, है ना, तो जो हमारी फालतू चीजें हम करते रहते थे ना डिस्ट्रक्टिव, वो ऑटोमेटिकली छूट गया ना हमसे, हमें लगा कि यार वही चीजें करने से तो मेरी लाइफ में दुख तकलीफें आ रही थी, लेकिन अब मैं जब सही चीजें करने लग गई, सही चीजें होने लग गई मेरे साथ, मतलब हायर टेस्ट आ गया मेरे जीवन में, तो मेरी लाइफ बेटर होगी ना, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स जब स्पिरिचुअलिटी का उत्तम रस मिलता है ना जीवन में, तो संसार के जो सारे सुख है ना वो सब फीके पड़ जाते हैं उसके आगे। फ्रेंड देखो, और जैसे हम किसी को समझाते हैं, है ना, कि आपको ये आदत अपनी छोड़ देनी चाहिए, हम हाउस वाइफ है तो हम ज्यादातर अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को समझाती रहती है ना कि आपको ड्रिंक्स नहीं करनी चाहिए या आप सिगरेट छोड़ देनी चाहिए आपको, कुछ भी ऐसे हम बहुत सारी बातें समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बात की है ना, मान लो किसी को डायबिटीज होगी तो हम लोग समझाते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए, है ना, और हो सकता है वो प्रेशर में आके छोड़ भी दे, लेकिन क्या मन से उनकी ये इच्छा छूटेगी? उनकी इच्छा मन से नहीं छूटेगी, है ना। इसलिए भगवान ने हमें ये बात समझाई हायर टेस्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है फ्रेंड, इसको अगर हम ध्यान से समझे तो। और कई डिवोटीज इस बात को हमारे साथ अनुभव कर चुके हैं, है ना। आप लोगों में से ही कई लोगों ने कहा कि मैं अपनी बात करूं तो मेरा ही टीवी छूट गया हुआ है, ऐसे नहीं मैं बिल्कुल ही नहीं देखती हूं, लेकिन जैसे पहले बहुत ही देखती थी, फिर पिक्चर भी देख रही हूं, टीवी भी देख रही हूँ, कोई सीरियल्स भी देख रही हूँ, क्राइम पेट्रोल भी देख रही हूँ, लेकिन अब मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जैसे कभी साल में एक आध पिक्चर देख ली, एक दो मैक्सिमम पिक्चर देख ली, और सीरियल तो मैं कोई देखती नहीं हूँ, कभी हस्बैंड ने कुछ लगाया हो तो दिख गया, कुछ ऐसे बैठी हूँ साथ में तो देख लिया, अदरवाइज मेरा टीवी तो ऑलमोस्ट छूट गया हुआ है ना। किसी की डिप्रेशन की गोलियां ही छूटी हैं हमारे ही इसी ग्रुप में, है ना। तो कैसे हुआ ये सब? उत्तम रस के कॉन्सेप्ट से। जो देखो अब जो समझाने वाली बात है वो तो हमें कई जगह समझाना पड़ता है, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को तो कई जगह हमें समझाना पड़ता है ना, लेकिन बड़ों को जो हम समझाते रहते हैं, अपने लव्ड वंस को, अपने हस्बैंड को, हमें लगता है कि हमें हमारा जीवन बेटर हुआ है, आपको भी इस रास्ते में चलना चाहिए, है ना। हमारा ये टेंडेंसी रहती है, हमें इस टेंडेंसी से भी बाहर निकलना है फ्रेंड्स, क्योंकि जिनको हम समझाना चाहते हैं ना उनको समझना ही नहीं है, तो क्यों हमें फालतू टाइम वेस्ट करना है? हमारे लिए भी एक ही लाइफ है ना, उनके लिए भी वो यही लाइफ है, तो हमारे लिए वो एक ही लाइफ मिली है जिसमें हमें अपना भी कुछ भला करना है, हमें भी कल्याण के रास्ते में चलना है। और उससे होगा क्या अगर आप मान लो अगर आप नहीं समझाते हो किसी को, तो इससे ये नहीं समझना है कि किसी दूसरे को समझ नहीं आएगा, आपके बोलने से नहीं दूसरे को समझ आएगा, है ना। जो आपकी वाइब्रेशंस है ना सबको वो फील होंगी। आप चाहते हो ना कि सब स्पिरिचुअलिटी का जीवन जिए, अध्यात्म के रास्ते में चले, है ना, सबको सत्संग सुनना चाहिए, भगवत गीता सुननी चाहिए, माला करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, लेकिन अभी उनकी स्टेज ऐसी नहीं आई है। देखो आपके कहने से हो सकता है कि आपके बड़े ना सुने, लेकिन हो सकता है आपका बेटा सुन ले, हो सकता है वो सोचे क्यों ना मैं मम्मा के साथ आरती कर लेता हूँ, माला कर लेता हूँ, तो ऐसे बहुत इंसिडेंट आपके लोगों के साथ हो ही रहे होंगे ना, है ना। तो जो आपके साथ चलना चाहता है तो आपको वहां पे बदलाव लाना, उससे धीरे धीरे ना पूरे घर के वातावरण में उत्तम रस आता है फ्रेंड्स। पहले आप बदलते हो ना, आपने प्रैक्टिसेस की और आपकी प्रैक्टिसेस उनको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जब पॉजिटिविटी फैलेगी आपकी प्रैक्टिसेस से, तो किसको अपने घर का वातावरण सुखद अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अगर आप बदल रहे हो, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, तो जो ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, आपके परिवार को भी मिलना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, आप भगवान के रास्ते में चलते हो ना, तो भगवान जो आपके आसपास का जो वातावरण है ना, जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर, उसको बदलना शुरू हो कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सिंसियरिटी से चल रहे हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं उनको इफेक्ट ना करें, है ना। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कम से कम 3-4 साल आप इस रास्ते में चल पड़े तो आपकी तो बुरी आदतें छूटेंगी, आपके परिवार की भी बुरी आदतें छूटने लग जाती हैं। फ्रेंड्स, है ना, तो हमें ज्यादा समझाने वाले काम में नहीं पड़ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर देना, है ना। हाँ, हम मदर हैं, हमें बच्चों को तो समझाना पड़ता ही हो, तो वो करना ही है ना, बाकी किसी की रोका टोकी नहीं करनी हमें। जब मैं आपको अपना बताऊं ना, जब मैं चली थी ना 2020 में, आई थिंक 1-1.5 साल फ्रेंड मुझे कुछ भी बोलने की पता नहीं क्यों, मेरे को अंदर से इच्छा ही नहीं करती थी किसी को भी कुछ बोलने की, या आपको भी इस रास्ते में पता नहीं क्या हो गया हुआ था उस वक्त। मैं अपना भगवद गीता सुन रही थी, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती रहती थी, है ना, और कई बार तो मैं बता रही हूँ, मेरे आगे भगवद गीता पढ़ रहती थी और सो गई होती थी, तो मेरे हस्बैंड आके मेरे आगे से किताबें उठाते थे और लाइट बंद करते थे। कई बार मैंने आपको शेयर किया हुआ है, मेरे हस्बैंड ने भी आपको शायद शेयर किया था, है ना। तो मतलब वो 1-1.5 साल का प्रोसेस ऐसा था ना, कि मतलब मैंने सिर्फ सेल्फ फोकस अपने आप ही हुआ है, कुछ बोल के नहीं हुआ, अपने आप सिर्फ अपने पे फोकस, मैंने किसी को नहीं बोला, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने लव्ड वंस को, कि आपको भी इस रास्ते में चलना चाहिए। हाँ, जो सुनना चाहता है उनको बताओ, जो नहीं सुनना चाहते उनको कुछ रोका टाकी मत करो, कुछ मत करो। इसमें हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, हमें क्या लगता है कि दूसरा बल गलत कर रहा है, मैं ही ठीक कर रही हूँ, इस कॉन्सेप्ट से मैं बाहर आना है। ये आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी है ना, बस इसको समझना है कि ये भगवान के रास्ते में मैं चल रही हूँ ना, वो दूसरा थोड़ी चल रहा है। अगर हम भगवान के रास्ते में चल रहे हैं तो भाई मैं ब्लेस्ड हूँ, लेकिन ये नहीं कि दूसरे नीचे गिर गए, ये नहीं सोचना ना फिर फालतू बातें, है ना। जब उनका टाइम आएगा, हो सकता है वो उनकी जर्नी हमसे भी बहुत कहीं ऊपर जाए, है ना। ये मेरा टाइम है सेल्फ फोकस का, तो मुझे सेल्फ फोकस करके अपने रास्ते में चलना, जो भी रास्ता मैंने पकड़ा हुआ है ना। तो अपने आचरण को, अपने विचारों को बदलने का फोकस कीजिए, है ना। और जो प्रचार आप चाहते हो वो आपके आचरण से ऑटोमेटिकली होगा, घरों में खासकर, है ना। और ज्यादा समझाने से क्या होता है, तनाव बनता है, ज्यादा आप समझाते रहोगे आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, हर वक्त आप किसी के ऊपर तलवार लेके खड़े रहते हो, तो उससे क्या होता है, टेंशन बनती रहती है घर में, है ना। तो इस रास्ते में भी चलना तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना, कि मैं चल रही हूँ, मेरी अध्यात्मिक यात्रा चल रही है ये, है ना। तो इस रास्ते में कोई चलना चाहेगा तो मेरे को बिल्कुल समझाना है उसको, है ना। क्योंकि मैंने तो ये ऑब्जर्व किया फ्रेंड, जो 1-1.5 साल के बाद मैंने कई लोगों को समझाने की ऐसे कोशिश की, बिल्कुल ही जो बिल्कुल लव्ड वंस अपने हमारे क्लोज लोग होते हैं, लेकिन वो नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि मैं जो कर रही हूँ कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जो उनके कर्म है, भगवान ने उनको कर्मों का भी, तो जो भी उन्होंने कर्म किए हुए हैं अच्छे बुरे, फल मिलके ही उन्होंने बाहर आना ना इन चीजों से, ऐसे कैसे आ जाएंगे वो, तो हमारे समझाने से कुछ नहीं होगा। ये हमारा टाइम था और भगवान की ब्लेसिंग्स थी कि हम इस रास्ते में चले हैं और हम भगवान की बातों को थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में अपना पाए। तो अगर हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ रही है, आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, तो आप कई बार हैरान भी हो जाते होंगे, है ना, कि पहले तो कितनी बार जोर लगा लिया, तब तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे, मैं अभी भी अपने आप से जैसे बात करती, कैसे हुआ, मुझे तो समझ नहीं आता ये सारी बातें, कैसे हुआ, कैसे ये, मैं कैसे इस रास्ते में चली, और फिर कैसे नेगेटिव जो सिचुएशंस होती हैं वो कैसे पॉजिटिविटी में बदल जाती हैं, है ना। आसपास के लोग बदलने शुरू हो जा रहे हैं, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, तो करता वो है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं, तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। और हम करते उल्टा, हम चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ बस वही हो, बट होता तो वही है ना जो भगवान चाहते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम बस वो करो, है ना। भगवान क्या कहते हैं, सिंपल लाइफ है हमारी, बस उसको सिंपल ढंग से जीना है, अपने मनोधर्म बीच में नहीं गुजारने हैं। जैसे भगवान ने अपना जीवन जिया, सेम फुट स्टेप्स है हमारे लिए, वो जैसे भगवान ने लाइफ जी, हमें भी वैसा ही लाइफ जीनी, स्पिरिचुअलिटी का जीवन, अध्यात्म का जीवन जीना है। फिर आप भी भगवान के चमत्कार देखकर आप भी हैरान होगे फ्रेंड्स, कि जब आप समझा रहे थे तो आपको लगता था कि आप समझा लोगे, लेकिन जब आप भगवान से जुड़े, है ना, उनके शरणागत हुए, तो कैसे वो चीजें बदलने लगी। तो वो चीजें क्या हम बदल सकते हैं? ना मैं बदल सकती हूँ, ना आप बदल पाओगे फ्रेंड्स, जो बदलेंगे प्रभु बदलेंगे, है ना। तो आपने अगर परमात्मा पे भरोसा कर लिया तो ऑटोमेटिकली है कि उत्तम रस मिलेगा, है ना। तो आपका भी कल्याण होगा, और आपके आसपास के जुड़े लोगों का भी कल्याण होगा फ्रेंड्स। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंस है तो आप बात कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच मोना दी। आज का सत्संग भी बहुत आनंद वाला था। आज आपने जो दो श्लोक करवाए हैं उनसे मेरी ये लर्निंग्स बनी हैं कि हमें हमारी इंद्रियों को मटेरियल डिजायर से हटाकर प्रभु की ओर केंद्रित करना है, क्योंकि हम हमारे पूरे जीवन में हमारी इंद्रियों को फुली सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। केवल एक ही तरीका है जिससे हम हमारी इंद्रियों को फुली सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और वो है सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रभु भक्ति और प्रभु प्रेम से। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाएगा या होगा, होता भी है कि इंद्रियों को कंट्रोल करके मटेरियल डिजायर्स को इग्नोर करने पर भी कभी कभी हमें किसी पर्टिकुलर डिजायर के प्रति हमारे मन में आसक्ति आने लगती है। परंतु हम इस बात से भी ऊपर उठ सकते हैं। केवल एक ही रास्ता है अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करने का, और वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ही हम खुद पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी, ब्यूटीफुली आपने भी दोनों श्लोकों को अच्छे से समझा दिया, थैंक यू। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन ऑफ द ग्रुप। आज का भी सत्संग बहुत ही अच्छा था और आपने बहुत ही अच्छे से कराया भी है। तो आज की जो आपने वर्ष कराया है उससे मेरी जो लर्निंग बनती है ना, वो ये कि जो हमारी इंद्रियां है ना, हमेशा संसारिक विषय वासनाओं में फंसी रहती हैं, और इसी कारण हम अपने मन और बुद्धि को ना राइट डायरेक्शन में भी नहीं चला पाते। जो मनुष्य का मन है ना, वो हमेशा ही ना सिंपल और इजी रास्ता अपनाता है ना, तो वो मन के पीछे पीछे चलता रहता है ना। जैसे जो मन का जो स्वभाव है ना, वो मैं जो थोड़ा बहुत समझती हूँ ना, वो जैसे पानी के हिसाब से है। जैसे पानी ने नीचे की तरफ ही बहना है ना, मन ने भी वही सिंपल सा इजी सा ही काम करना है। तो यदि हम अपने मन को या अपने अंदर के जो नेगेटिविटी को छोड़कर अंदर से प्रभु से समर्पित हो जाए ना, तभी हमारे जो कर्मों की जो श्रेष्ठता है वो बढ़ती है। जब हम अपने मन को स्थिर बुद्धि बन और स्थिर प्रकृति वाले प्रभु से जुड़ते हैं ना, तो हमें जो आनंद और रस की प्राप्ति होती है उससे हमारी इंद्रियां खुद ही खुद पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। तो हमें यही चाहिए कि हमें अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए, प्रभु को हमेशा विद्यमान मानते हुए श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और जिससे कि हमारी जो इंद्रियां वो अपने आप ही हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच कुमार जी, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया आपने भी दोनों श्लोकों को। फ्रेंड देखो, गोलोक एक्सप्रेस से हम जुड़े है ना, तो उसमें हमें यही बताया गया कि डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन में हमें जाना। जो भी आप डिस्ट्रक्टिव करते हो अपनी लाइफ में, जो भी टाइम पास की गतिविधि हम लोग करते रहते हैं, बहुत सारी होती है ना, तो हम लोग देखो पहले वही चीजें करते रहते थे है ना, हमें पता नहीं था लाइफ जीनी कैसे, तो हम लोग वही जो कर रहे हैं, टीवी देखना है, सोना है, शॉपिंग करना है, या कुछ भी जो अपनी अपनी सबकी होती है टाइम पास की गतिविधियां है ना, तो उसमें एंगेज रहते थे, क्योंकि भगवान का कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है। पता है बस वो दो टाइम की भक्ति की है और बाकी टाइम अपना मन गढ़न जीवन जिया है ना। और वो जो चीजें जब हम करने लगे, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन में आने लगे, भगवत गीता जीवन में ज्ञान मिलने लगा, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करने लगे है ना, तो अपने आप ही वो क्या हुआ, फिर वो उत्तम रस का आनंद मिलने लग गया ना। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इंद्रियां प्रभु सेवा में लगा दी, मतलब कुछ और अंदर जाने ही नहीं दिया। ये हुआ एक्चुअली हमारे साथ, हमने कुछ और अंदर ना कुछ गलत सुनना है, ना कुछ गलत पढ़ना है, ना गलत देखना है। ऐसे हम 10 जगह जो हमने अपनी बुद्धि को घुसा के रखा होता है ना, कि ये भी कर लो थोड़ा, वो भी कर लो थोड़ा, ये भी थोड़ा, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ बुद्धि पे कैसे चलेंगे फिर हम। जो एक महात्मा व्यक्ति चल रहा होता है, उसका एक ही फोकस होता है परमात्मा को पाना, परमात्मा के प्रेम को पाना है ना, तो इसलिए वो हर संभव प्रयास करता है अपनी इंद्रियों को काबू में करने के लिए, अपने मन को काबू करने के लिए है ना। लेकिन अगर हम उस रास्ते में नहीं चले, हमने थोड़ा सब कुछ ही किया ना अगर जीवन में, तो फ्रेंड्स फिर हम इस रास्ते में नहीं चल पाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा आनंद मिलने लग गया तो बस इतने तक ही हम सीमित रह जाएंगे है ना। लेकिन जो जो बातें हमें भगवान बता रहे हैं, अगर हम उनको डीपली एक्चुअली करते गए ना, अपने आप ही जो आगे के रास्ते है ना, अभी तो हमें पता नहीं आगे के रास्ते क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो आगे का रास्ता जो कोहरा आया छाया हुआ वो अपने आप ही छटता जाता है और हमें आगे का रास्ता फ्रेंड्स क्लियर दिखना शुरू हो जाता है ना। थैंक यू सो मच कोमल जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोना जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन था। सच में आपने जो दो शो कराए हैं उससे जो मेरी लर्निंग बनी है कि हमें अपनी सेंसेस का दास नहीं बनना है। भगवान में बता रहे कि सिर्फ बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो भगवान अपनी बुद्धि को भगवान में लगाते हैं तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं कि ताकि, क्योंकि भगवान जानते हैं ना कि भक्त के मन में क्या है। क्योंकि पहले हम जो संसारिक विषयों में उलझे पड़े थे तो वो हमें पता ही नहीं था। आप भी बताते कि क्या करना है, मतलब ये करना है या वो करना है, मतलब एक डिसीजन, सही डिसीजन नहीं ले पाते थे। हमें अपनी इंद्रिय और मन को संसारिक विषयों से हटाकर हमें अपना ध्यान श्री हरि में लगाना है, तो अपने और इंद्रियों को संयम करना है। और कछुए के माध्यम से जो आपने जो एग्जांपल दिया कि हमें अपनी जहां भी कहीं हम अपने संसारिक दुनिया में हैं, जाते हैं, बैठना है, उठना है, तो उधर कैसे बात करनी है, वो इस अपनी सेंसेस को हमने अपनी कछुए की तरह ही अपनी कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि पहले जब हम भगवत गीता नहीं पढ़ रही थी तो इन बातों का नहीं पता था कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। वही दो टाइम की जो मतलब दो अगरबत्ती कर लिया, कोई बुक्स पढ़ ली बस, तो उसमें भी वो हमें लिस्ट लेके बैठ जाना। अब तो ये है कि हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हमें सही रास्ता चलाना, हर वक्त यही प्रेयर रहती है। उनकी जो एक्टिविटीज हम करती है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, भोग लगाना शुरू किया है, चैंटिंग करना शुरू किया है, तो बुद्धि भी अब थोड़ी थोड़ी भगवान की तरफ लगना, अंदर से भगवान की तरफ, बाहर से तो जो हमारा शरीर है वो हमारी जो बेसिक ड्यूटीज है वो हमें करनी ही करनी है। तो उन ड्यूटीज को करते हुए हमें ना ही अटैचमेंट रखनी है। प्रभु ने हमें ये ड्यूटी दी है कि बॉडी लेवल से जो भी हमारे रिलेशन है, हमारी फैमिली है, उनका हर एक ड्यूटी करते हुए हमें श्री हरि चरणों में अपनी ड्यूटीज को रखना है। और हायर लेवल की डिवोशन तो अभी हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उधर तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी अभी अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे तभी जाके हम उधर पहुंच पाएंगे। मना जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू, थैंक यू सो मच ममता जी, ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज यूजुअल, थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, हम भजन की तरफ चलते हैं। हाँ जी ठीक है किरण जी, आप कर लो भजन। हरी बोल।
हरी हरी बोल। पहले तो आज का सत्संग हमेशा की तरह बहुत डिवाइन था और हमेशा दी कुछ ना कुछ ऐसा समझाते हैं जो मुझे हमेशा जरूरत होती है कि मुझे इस बात पे अटकी हूँ मैं, आज इस बात का कृष्णा जी हल दे देना, तो मेरे को मिल जाते हैं। तो बाकी आपने बताया कि दूसरों को बताना, पहले जब स्टार्टिंग में हुआ था तो मेरे को ईश्वर जी भी हमेशा बोलते हैं, मैं बड़ी उतावली रहती हूँ कि इतनी सारी माला फटाफट कर ली, जब फटाफट ये करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर, पर नहीं, धीरे धीरे मुझ में स्टेबिलिटी आ गई। तो अब मैंने देखा है, पहले मैं बताने की कोशिश करती थी कि ऐसे करना चाहिए, दूसरों को ऐसे करना, जब से मैंने खुद को सुधारना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना शुरू किए, अब दूसरे हमें सुनना चाहते हैं। हाँ, जैसे मेरे ससुर जी बताए, मेरे को बोल रहे थे ये क्या पकड़ा होता है तूने, मैंने बोला मैं टेलीकाउंटर पकड़ा होता है, मैंने तो क्या करती है बेटी, मैंने कहा मैं इससे माला करती हूँ, तो ये कैसे होता है फिर, आप मेरे को भी दे दो, मेरा टाइम पास नहीं होता, या मैं कैसे करूं, फिर मैंने उनको बताया। तो अब वो चैंटिंग करते हैं टेलीकाउंटर से, तो मेरे को अंदर से इतनी खुशी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बता नहीं सकती थी, मुझे लगता था कि नहीं, मतलब इन चीजों को कोई नहीं सुनना चाहता, नहीं, जब हम खुद को सुधारते हैं, दूसरे हमें देखते हैं तो वो खुद ब खुद हमसे सीखना चाहते हैं कि जैसे हमें तो पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो दूसरे नोटिस करते हैं हमें। तो ये सब कोई कुछ भी अगर बदलाव आया है तो सत्संग के माध्यम से आया। थैंक यू दी। अब मैं अपने भजन की तरफ बढ़ती हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, वो चलो सत्संग में चले, वो चलो सत्संग में चले, मुझे हरी गुने गाना है, आंबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, ओ मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। इस विश्वभर प्याले को, इस विश्वभर प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है, ओ चलो सत्संग में चले मुझे हरी गुण गाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, द्रोपता पुकार रही आओ मेरे बनवारी, ओ द्रोपता पुकार रही आओ मेरे बनवारी। ओ लुट ना जाए कहीं, ओ लुट ना जाए कहीं मेरी लाज को बचाना है, ओ चलो सत्संग में चले मुझे हरी गुण गाना है। सांबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, शबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई, ओ शबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई। इन्हें खट्टे मीठे बेरों का, इन्हें खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है, चलो सत्संग में चले मुझे हरी गुण गाना है। सांबरी से मिलने का सत्संग ही भूखा बहाना है। हरे हरे बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे,
हरी हरी बोल। हरी थैंक यू, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भजन गाया आपने, बहुत ही भाव से गाया, थैंक यू। फ्रेंड्स अब प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल अभिमान, हरे हरि बोल कर सत्य, हर पर आनंद, जय श्री राधे कृष्ण, हरे हरि बोल।